ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة فَتَمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم بزرگوں اور بھائیوں کل ایک مسئلہ ضمناً آ گیا تھا میں ایسا خیال کرتا ہوں کہ وہ مسئلہ کل پورا واضح نہیں ہوا وہ مسئلہ تھا جینیٹک کا مسئلہ جینیٹک کہتے ہیں سائنس آف ہیریڈیٹی اوپر سے نیچے اولاد میں کیا اثرات آتے ہیں میراث میراث کس طرح نیچے اوپر سے نیچے میراث کس طرح اترتی ہے اس کا جو علم ہے اس کی جو سائنس ہے وہ جینیٹک کہلاتی ہے کل یہ مسئلہ ضمناً آیا تھا پھر پوری میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس کی پوری وضاحت کل نہیں ہوئی ہے ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ کوئی جانتا ہی نہیں مگر آپ کے اس ملک میں یہ مسئلہ آپ حضرات کو بار بار آپ کے سامنے آتا رہتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں اور کہاں آتا ہے صرف چار رشتوں میں کسی نے چچا زاد بہن سے شادی کی پھوپھی زاد بہن سے شادی کی مامو زاد بہن سے شادی کی خالہ زاد بہن سے شادی کی تو یہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری اوپر سے آئی ہے اور قریبی رشتے میں تم نے شادی کر لی اس لیے یہ بیماری ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں اور یہ ان کے دماغوں میں ایسا بیٹھا ہوا ہے یہ سب رونگ ہے مگر رونگ ہے اس کو سمجھنا پڑے بغیر سمجھے نہیں رشتے کل چار ہیں اور چار رشتوں سے ساری دنیا ایک فیملی ہے رشتے کل چار ہیں اور ان چار رشتوں سے ساری دنیا ایک فیملی ایک وہ جو آدمی سے نیچے پیدا ہوئے بیٹا بیٹی پھر بیٹا کی اولاد پوتا پوتی نواسا نواسی پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد یوں اس وقت ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد یوں ہیں लिहाजा आदमी से जो भी पैदा हुआ उससे निकाह नहीं हो सकता, वो करीबी रिश्ता है। और करीबी रिश्ते में हमारी किताबों में तो हिकमत ये लिखी गई है कि रगबत पूरी नहीं होती, और निकाह में रगबत अगर ना हो तो निकाह से फायदा क्या? मियाँ बीवी में रगबत ना हो तो फायदा क्या निकाह से? और बेटी से कोई निकाह करे तो बाप की बेटी की तरफ रगबत नहीं होती, बेटी की बाप की तरफ रगबत नहीं होती, रगबत नहीं तो निकाह से क्या फायदा? ये हमारी किताबों में हिकमत ये लिखी है, लेकिन एक हुक्म की मुतअद्दद हिकमतें होती हैं। बस ये हिकमत कि ये करीब तरीन रिश्ता है, इसलिए शरीयत ने सबको हराम कर दिया। कयामत तक हमारी नस्ल में, कयामत तक जितना दूर चले जाएंगे सब हराम। दूसरा रिश्ता है जिनसे आदमी पैदा हुआ है, आदमी माँ और बाप से पैदा होता है, फिर बाप अपने माँ बाप से पैदा होता है जिसको हम दादा दादी कहते हैं, फिर दादा के माँ बाप हैं, दादी के माँ बाप हैं, इसी तरह माँ माँ अपने माँ बाप से पैदा हुई जिसको हम नाना नानी कहते हैं, फिर नाना के भी माँ बाप हैं, नानी के भी माँ बाप हैं, ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम तक चलता जाएगा। ये सब रिश्ते हराम हैं, ये भी करीब तरीन रिश्ते कहलाते हैं। वो दुनिया में मौजूद 6-7 रिश्ते ही होते हैं, इससे ज्यादा एक वक्त में ज्यादा मौजूद नहीं होते, 6-7 रिश्ते होते हैं। मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने 5 नस्लें तो मैंने देखी, मेरे दादा की गोद में मैं खेला हूं, मुझे खूब याद है, फिर मेरे वालिद, फिर मैं खुद, फिर मेरे बेटे, फिर मेरे बेटे बेटियों की औलाद, 5 नस्लें तो मैंने देख रखी, और अगर मैं 100 साल का हो गया तो 2 नस्लें और देखूंगा। तो 5-6-7 ही नस्लें एक वक्त में मौजूद रहती, लेकिन फर्ज करो कि अगर कयामत तक की नस्लें मौजूद हों सबसे निकाह हराम, और आदम अलैहिस्सलाम तक के दादा दादी नाना नानी मौजूद हो जाए तो सबसे निकाह हराम। ये 2 रिश्ते नियरेस्ट कहलाते हैं, करीबी रिश्ते हैं। तीसरा रिश्ता है पहली असल, करीब तरीन असल की जितनी ब्रांचेस निकली, शाखें निकली, वो सब हराम। करीब तरीन असल क्या है? माँ और बाप। हम में से हर इंसान माँ बाप से वजूद में आया है, तो ये करीब तरीन असल है माँ और बाप, इनसे जितने निकले वो सब हराम। उनसे 3 तरह की औलाद निकलती है, एक तो माँ और बाप दोनों से निकले, वो तो हकीकी भाई और हकीकी बहनें हैं मेरी, वो तो मेरे हकीकी भाई और हकीकी बहनें हैं। और अगर बाप की दूसरी बीवी है जो मेरी माँ नहीं है तो वो अल्लाह की भाई बहन है, वो भी सब हराम। और माँ के मेरे बाप के अलावा शौहर से जो औलाद है वो अखिया भी भाई बहन है, वो भी सब हराम। ये 3 तरह की औलाद होती है, पहली असल में से 3 तरह की औलाद निकलती है। मेरे माँ बाप, उन माँ और बाप दोनों में शरीक, वो मेरे हकीकी भाई बहन है, वो सब हराम। और नीचे कयामत तक जो उनकी औलाद आएगी, भतीजे भतीजियां, फिर उनकी औलाद, सब हराम। और सिर्फ बाप की औलाद, वो भी हराम, वो अल्लाह की भाई बहन है। सिर्फ माँ की औलाद, वो भी हराम, वो अखिया भी भाई बहन है। और फिर उनकी औलाद भी हराम आखिर तक। चौथा रिश्ता है मेरे जो असल हैं, आदम अलैहिस्सलाम तक जित असल जो जाएगी उसकी जो पहली जेनरेशन है वो हराम, फिर उस जेनरेशन के आगे औलाद है वो हलाल, उनसे निकाह जायज। देखो माँ और बाप ये तो पहली करीबी असल है, फिर बाप से ऊपर दादा दादी, उनमें से जो निकलेंगे, अगर दादा दादी दोनों से निकलेंगे तो वो हकीकी चचा और हकीकी फूफी होंगे। सिर्फ दादा से निकलेंगे तो वो अल्लाह ती चचा और अल्लाह ती फूफी होंगे, सिर्फ दादी से निकलेंगे तो अकिया भी चचा और अकिया भी फूफी होंगे। इसी तरह माँ करीब तरीन है, माँ से ऊपर हैं नाना नानी, इनमें से जो निकलेंगे वहां से भी तीन निकलेंगे, नाना नानी दोनों से निकलेंगे तो हकीकी मामू और खाला हैं, और अगर सिर्फ नाना से निकले तो अल्लाह की मामू और खाला हैं, और सिर्फ नानी से निकले तो अकिया भी मामू और खाला है, ये सब हराम। फिर उनकी जो औलाद है वो जायज, हकीकी चचा हकीकी फूफी हराम, उनकी औलाद जायज। अखियाफी अल्लाह ती चचा फूफी हराम, उनकी औलाद जायज। हकीकी मामू और खाला हराम, उनकी औलाद जायज। अखियाफी अल्लाह ती हराम, उसकी औलाद जायज। फिर ये तो दादा और दादी में से निकले, पर दादा और पर दादी में से जो निकलेंगे, पर दादी में से जो निकलेंगे उनके भी जो पहली असल है वो चचा फूफी हैं, वो हराम और उनके औलाद जायज। ऐसे ही आदम अलैहिस्सलाम तक चले जाओ, आदम अलैहिस्सलाम तक हमारा जो दादा है या जो नाना है उसकी जो पहली औलाद है वो चचा फूफी और खाला मामू हैं और वो हराम है, और फिर उनकी जो औलाद है वो हलाल है। लिहाजा पूरी दुनिया एक फैमिली हो गई, आदम अलैहिस्सलाम तक चलते चले जाओ, दादा दादी दादा दादी बेशुमार दादे दादी बन जाएंगे, और जितने दादे दादी नाने नानी बन जाएंगे सबकी पहली असल हराम है और उनके औलाद फिर हलाल हो जाएगी। दलील, नकली दलील तो ये है कि क़ुरान करीम में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आयत है, इन्ना अहललना लक अज़्वाजकल्लाती आतैत उजूरहुन्ना, फिर लंबी आयत है, उस लंबी आयत में आगे है वो बनाते अम्मी का, वो बनाते अम्माति का, वो बनाते खाले का, वो बनाते खालाते का। हुजूर से फरमाया गया कि आपकी चचा की बेटियां आपके लिए हलाल की गई, आपकी फूफी की लड़कियां आपके लिए हलाल की गई, आपके मामू की लड़कियां आपके लिए हलाल की गई, आपका खाला की लड़कियां आपके लिए हलाल की गई। ये सूरह अहज़ाब में आयत पाक है नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। और अमली तौर पर हुजूर की बीवियों में हजरत ज़ैनब बिन्त जाश हुजूर की फूफी जात बहन थी और हुजूर के निकाह में थी। तो दलील अकली तो यह है कि कुरान में खुद इसकी सराहत मौजूद है और खुद हुजूर ने अपनी फूफी जात बहन से निकाह किया है। और दलील अकली ये है कि अगर ये चचा फूफी और खाला मामू की औलाद को भी आप करीबी रिश्ता करार देंगे और हराम करार दे और निकाह हराम कहेंगे तो फिर किससे निकाह करेंगे? सारी दुनिया तो चचा फूफी खाला मामू की औलाद है, ये सारी दुनिया तो चचा फूफी खाला मामू की औलाद है, फिर निकाह करोगे किससे? इसलिए वो हुरमत एक जगह तक रोकनी पड़ेगी, उसे नीचे नहीं उतार सकते हो वरना निकाह सिलसिला बन हो जाएगा। यहां रुक करके एक बात समझो, हमारे यहां हिंदुओं का भी एक तरीका है, हिंदुओं का तरीका ये है, एक मिसाल दूं। हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी वालिदा का नाम है इमरान। हज़रत मरियम की वालिदा का नाम है मालूम नहीं, हन्ना नाम है, उनके वालिद का नाम इमरान है। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया जो हैं उनका भी मालूम नहीं क्या नाम है। ये दोनों बहनें थी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी और हज़रत मरियम की वालिदा, ये दोनों बहनें थी। हज़रत इमरान की बीवी से हज़रत मरियम पैदा हुई, तो हज़रत ज़करिया की बीवी खाला हुई। किसकी? हज़रत मरियम की खाला। और हज़रत ज़करिया के साहिबजादे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। तो क्या हुए? खालाजाद भाई बहन हज़रत मरियम और हज़रत याहिया, खालाजाद भाई बहन। फिर हज़रत मरियम के साहिबजादे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया का रिश्ता बताओ। हमारे हिंदू कहेंगे मामू बन जाए, हमारे हिंदू कहेंगे मामू बन जाए, याहिया अलैहिस्सलाम मामू कहेंगे और हज़रत ईसा को भांजा कहेंगे। ये गलत है, हिंदू आना तस्वूर है। मेराज की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तीसरे आसमान पर पहुंचे हैं तो वहां हुजूर की मुलाकात हुई हज़रत ईसा और हज़रत याहिया अलैहिम सलातु वसलाम से। हदीस में आया है इब्नल खालत, खालाजाद भाइयों से मुलाकात हुई। बस हज़रत याहिया और हज़रत ईसा खालाजाद भाई हैं, मामू भांजे नहीं हैं। मामू भांजे हिंदू तस्वूर है, इस्लामी तस्वूर में ये दोनों खालाजाद भाई हैं। और मेराज के हदीस में यही लफ्ज आया है इब्नल खालत, खाला के दो लड़के। और अकली दलील ये है कि यहिया अलैहिस्सलाम की जगह पर अगर कोई बेटी होती तो फिर क्या हिंदू क्या रिश्ता करते? खाला भांजा, और खाला भांजा होकर के इस भांजे का उस खाले से निकाह भी दुरुस्त है। कैसी खाला है जिसे निकाह दुरुस्त है? ये हिंदुओं का सब बोगस फलसफा है। इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम तक हमारे हर दादा की जो पहली नस्ल है वो हमारी चचा है, मुजक्कर और मोअन्नस है तो वो भी, और फिर उसकी जो औलाद है वो चचा जात फूफी जात। ऐसे माँ की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम तक हर नाना की जो पहली औलाद है वो हमारे मामू और खाला है, फिर उनकी जो औलाद है वो खाला जाद मामू जाद। जब सभी आदम अलैहिस्सलाम तक सब चचा और फूफी हैं, सब मामू और खाला हैं, तो अगर ये हुरमत भी तुम नस्ल में चलाओगे तो फिर शादी किससे करोगे? फिर तो कोई रहा ही नहीं जिससे शादी हो। इसलिए ये आपके मुल्क के जो के डॉक्टरी नज़रिया है ये नज़रिया सही नहीं है। अगर इस नज़रिए को लोगे तो फिर किससे निकाह करोगे? और अगर रोकोगे तो कहाँ तक रोकोगे और क्या दलील से रोकोगे? देखो जहाँ जो हमसे औलाद पैदा हुई आखिर तक हराम, जिनसे हम पैदा हुए दादा दादी नाना नानी आदम अलैहिस्सलाम तक हराम, भाई बहन से हराम तो उनकी सारी नस्ल हराम, कहीं वो उर्मत रुकेगी नहीं। तो अगर चचा और फूफी की औलाद की तरफ और मामू और खाला की औलाद की तरफ भी हुरमत ले जाओगे तो फिर रुकेगी नहीं, फिर आखिर तक ले जानी पड़ेगी। और आखिर तक ले जाओगे तो निकाह करोगे इससे? और अगर उस हुरमत को रोकोगे कि एक नस्ल तक, दो नस्ल तक, तीन नस्ल तक रोकोगे तो रोकने की दलील क्या है? किस दलील से रोकोगे? ये तो वो कल वाली बात थी, जेनेटिक वाली बात वो मैंने आपको समझाई। इख्तिलाफ हमारा इनका कहाँ है? देखो हमारी, हम जो बातें कह रहे हैं वो हमारी नहीं है, अल्लाह और रसूल की, और अकल के मुताबिक हैं, कॉमन सेंस के मुताबिक हैं। और ये जो डॉक्टर कहते हैं उनकी दलील क्या? कुछ भी दलील नहीं, उनका कौन सी दलील है? और अकल के खिलाफ है, अगर उनकी बात मानोगे तो भी सारी दुनिया से निकाह हराम हो जाएगा। और चचा और फूफी की औलाद को कहीं तक रोकोगे कि यहां तक हराम, उसके बाद भी दूर हो गया तो क्या दलील दूर होने की? फिर वो आयत पाक जो मैंने कल पढ़ी थी और आज भी पढ़ी है, उस आयत पाक का तर्जमा ये है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। कौन निकल गए? जो अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के हबीब पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान ही नहीं लाए। छोड़ो उन्हें, वो जो करना हो करें, उनसे क्या लेना देना हमें। लेकिन हम जो यहाँ इकट्ठा हैं, ये तो वो बंदे हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, अल्लाह के रसूल का दामन उन्होंने थाम लिया है। उनको पुकार कर कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्म काफ्फा। सिल्म, अस्सिल्म और अल इस्लाम के माने हैं दीन इस्लाम, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। अल्लाह फरमाते हैं कि दीन इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ, कंप्लीटली आ जाओ, थोड़े नहीं। जब अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर तुम ईमान ले आए, तो उसका तकाजा ये है कि एक के होकर रहो। अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के होकर रहो। अल्लाह के हबीब पर ईमान लाए, अल्लाह के हबीब के होकर रहो। एक पैर इस्लाम में और एक पैर इस्लाम से बाहर, ये तो हर जाई हुआ, ये तो हर जाई हुआ। हर जाई नहीं समझे तुम, उर्दू नहीं समझे पूरे। माशूक होती है उसका एक आशिक के साथ रहे, और आज इस आशिक के साथ है, कल उस आशिक के साथ है, परसों उस आशिक के साथ है, तो वो माशूक नहीं, वो तो हर जाई है। तो अगर एक अल्लाह के होकर रहो तो ईमान के तकाजे के मुताबिक तुम, और अगर उस एक के, एक अल्लाह के और एक रसूल के होकर न रहो, तो फिर तो तुम क्या ईमान हुआ तुम्हारा, तुम हर जाई हुए। तुम्हारा जी चाहा जुमा के दिन नमाज पढ़ने को तो पढ़ ली, और तुम्हारे जॉब ने कहा कि 6 दिन नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़ी, तो तुम कहाँ अल्लाह के रहे? जुमा के दिन तो तुम अल्लाह के रहे, 6 दिन तो तुम जॉब के हो गए, तुम्हारा जॉब खुदा हो गया। तुम्हारा जी चाहा कि खतना कराएं तो तुमने करा ली, तो अल्लाह के हुक्म पर तामिल की, और तुम्हारा जी चाहा दाढ़ी मुंडाने को तो तुमने दाढ़ी मुंडा दी, तो कहां अल्लाह के रहे? जिस अल्लाह ने और जिस शरीयत ने खतना कराने का हुक्म दिया है, उसी शरीयत ने यह भी हुक्म दिया है कि मूंछ काटो, दाढ़ी बढ़ाओ। अब तुमने मूंछ तो बढ़ा ली, दाढ़ी काट ली, तो अल्लाह के दीन के और अल्लाह के हुक्म पर कहां रहे तुम? एक कदम तो तुम्हारा अल्लाह के दीन में रहा, एक कदम तो तुम्हारा बाहर रहा। ये कोई ईमान का तकाजा नहीं, ये कोई इस्लाम का तकाजा नहीं है। जब इस्लाम ले आए तो अब कंप्लीटली इस्लाम में आ जाओ। एक शख्स हिंदू था, मुसलमान हुआ, मुसलमान होने के बाद भी गोश्त नहीं खाता, या गोश्त तो खाता है, गाय का गोश्त नहीं खाता, तो ये कंप्लीटली इस्लाम में नहीं आया है। उसकी लॉ हिंदू मजहब के साथ लॉ लगी हुई है। जिस मजहब में पहले था उस मजहब में गोश्त नहीं खाया जाता था, तो अब भी वो नहीं खाता, या गोश्त तो खाता है लेकिन गाय को वो मोहतरम मानता था और गोश्त गाय का नहीं खाता था, अब भी नहीं खाता। इसका मतलब वो कंप्लीटली इस्लाम में नहीं आया, मुसलमान होने के बाद भी उसकी लॉ लगी हुई उधर। या मिसाल लो, एक ईसाई था, वो मुसलमान हो गया और मुसलमान होने के बाद भी खिंजीर खाता है। मुसलमान भी खाते हैं खिंजीर। प्लेन में मेरे साथ नेक्स्ट सीट पर एक नौजवान था, पैंट शर्ट में था, क्या पता चले कौन है। जब खाना आया तो उसने पूछा, चिकन पोक? तो उसने कहा पोक। मैं समझा कोई ईसाई लड़का होगा। अच्छा शराब, वो तो खाने से पहले शराब देते हैं, 2 बोतलें ली उसने, पतली पतली छोटी छोटी 2 बोतलें ली, और पी तो एक, उसने एक वापस कर दी मगर ली 2। और फिर जब उसने पूछा तो चिकन पोक? तो उसने कहा पोक, और पोक लेकर खाया उसने। फिर जब टोरेंट उतरने का वक्त आया तो एमिग्रेशन फार्म भरना पड़ता है, तो मैंने देखा तो उसने अपना नाम इमरान लिखा और वतनियत ईरानियन लिखी। मैंने देखा उसे क्या फार्म भर रहा है, तो नाम उसने अपना इमरान लिखा और नेशनलिटी उसने ईरानियन लिखी। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि मुसलमान बच्चा कहां तक पहुंच गया है। तो ये तो बेराह रवि है। जाहिर है जब दीन सही उसे नहीं पहुंचाया गया और सही दीन पहुंचाने की उस पर मेहनत नहीं की गई तो ये हाल हमारे नौजवानों का हो जाएगा। मैं कभी देख करके आया हूं अपने नौजवान को, ये मैंने उससे कुछ कहा नहीं इसलिए कि वो उर्दू तो समझना नहीं था, पता नहीं कौन सी जुबान समझता था, अंग्रेजी बोलता था और मैं भी टूटी फूटी जानता था, इसलिए मैंने उससे कोई बात ही नहीं की। मगर मैंने उसको देखा कि उसने नाम ये लिखा, नेशनलिटी ये लिखी। मेरे भाइयों, आज हम अपनी दुनिया में मगन हैं और हम में से जो दीनदार हैं वो अपने दीन पर शादा व फरहा हैं कि अल्लाह जल्ल शानहु अम्मा नवालुहु ने हमें दीनदार बना दिया। हालांकि कुरान करीम में एक आयत पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यगुर्रुकुम मन ضل اذا اهتديتم। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम राह याब हो गए तो जो खड्डे में जाए जाए, तुम्हारा क्या बिगड़ता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यगुर्रुकुम मन ضل اذا اهتديتم। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि लोग इस आयत को गलत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हम दीनदार हैं, दीन पर सही अमल कर रहे हैं तो हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। हुजूर हजरत सिद्दीक ने फरमाया, कसम खुदा की मैंने हुजूर से सुना है कि अगर तुम जालिम का हाथ नहीं पकड़ोगे तो अल्लाह ताला अज़ाब सबको शामिल कर देंगे। चुनांचे उलमा कहते हैं कि ये आयत करीमा तबलीग करने के बाद इसका नंबर है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके, दीन पहुंचा चुके, तबलीग आप कर चुके और फिर भी नहीं मानता, तो अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम जबरदस्ती उसे दीन पर ले आए। कौन ला सकता है? ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती है ही नहीं, लेकिन दीन पहुंचाना ये जरूरी है। तो उलमा कहते हैं कि इस आयत का नंबर है दीन की सही तबलीग हो जाने के बाद। अगर आपने दीन की सही तबलीग नहीं की है और आप ये ख्याल रखें कि बस मैं हिदायत पर हूं, जाए सारी दुनिया जहन्नम की भाड़ में जाए मेरी बला से, ऐसा नहीं है। वो दुनिया जहन्नम की भाड़ में जाएगी तो उसकी पकड़ आपसे भी होगी। उसकी मिसाल है, अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अन्फुसकुम वाहलीकुम नारा। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपनी फैमिली को जहन्नम से बचाओ। खुद नमाज पढ़ ली तुमने, दीन पर अमल कर लिया, बीवी अगर दीन से दूर है, औलाद अगर दीन से वीरान है तो खुद नमाज पढ़कर खुद दीन पर अमल करके दुनिया और आखिरत में सक्सेस नहीं हो सकते हो। पकड़ होगी, दुनिया में भी होगी आखिरत में भी होगी। दुनिया में वबाल भुगतना पड़ेगा, अगर औलाद आवा वीरान हुई, बीवी बदचलन हुई तो उसका वबाल दुनिया में भुगतना पड़ेगा, और आखिरत में अगर औलाद बर्बाद हुई और बीवी गलत राह पर पड़ गई तो शौहर से और बाप से मुआखजा होगा कि तुमने ऐसे औलाद को क्यों किया। मेरे भाइयों, आज जो सूरत हाल है पूरी दुनिया की, जरा घर से निकलो और तुम्हें अपने महल्ले में मिसालें मिलेंगी, अपने शहरी में मिसालें मिलेंगी, अपने शहर के करीब देहातों में मिसालें मिलेंगे। आपको ऐसे मुसलमान मिलेंगे कि जो मुसलमान कहलाते हैं और दीन से वाकिफ नहीं, कोई दीन पहुंचाने उन तक गया ही नहीं, اور یہ صورتحال ابھی ماضی قریب نے نہیں بگڑی ہے، سینکڑوں سال سے یہ بگڑتی چلی آئی ہے، آہستہ آہستہ بگڑتی بگڑتی صورتحال یہاں چلی آئی کہ آج 70% مسلمان دین سے بے خبر ہو گئے. یہ جو 70% دین سے بے خبر مسلمان ہو گئے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ میرے بھائیو، ہم پر ہے. ہم کو جو چار لفظ دین کے آتے ہیں، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک دین پہنچائیں. دین ہم نے انہیں پہنچا دیا اور پھر بھی وہ دین کی طرف نہ آئیں، تو پھر اب ہماری ذمہ داری نہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ آیت کریمہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر آ گئے، دین پر ہم عمل کریں گے، دوسرے کہیں بھی جو کچھ ہونا ہو، چاہے گمراہ ہو جائے، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا. یہ صحیح نہیں ہے. یہ آیت کریمہ پہلے تبلیغ پوری کرو، ہدایت پہنچاؤ، دین پہنچاؤ، اور پہنچانے کے بعد اگر وہ دین پر نہ چلے تو اس کی مرضی، وہ جانے، پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن اگر ہم نے دین کی صحیح تبلیغ نہیں کی تو اللہ کی ہم سے بات پھر سے ہونے والی. تو اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ایمان لے آئے ہو تو دین اسلام میں پورے آ جاؤ. لفظ اسلام کے معنی ہیں سر افگندگی، یہ فارسی ترجمہ ہے، سرینڈر ہونا، سر افگندگی، سر ڈالنا. آپ لوگ تو بہت کھیتوں سے بہت دور ہو گئے، تھوڑی دیر کھیت میں چلو، ایک مثال دوں. حالی بیل لے کر جب ہل جوتنے کے لیے جاتا ہے، حالی کہتے ہیں اس نوکر کو جس کا کام ہل چلانا ہے، حالی اردو میں کہتے ہیں. جب وہ بیل لے کر کھیت میں ہل چلانے جاتا ہے تو ایک بیل کو دائیں گھماتا ہے، ایک کو بائیں گھماتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ کچھ نہیں بولتا، جوا یوں اٹھاتا ہے، جوا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں جویت، وہ یوں اٹھاتا ہے، کچھ نہیں بولتا. اگر شاندار بیل ہیں تو فوراً سر ڈال کر کے یہ جوا اپنی گردن پر لے لیں گے. یہ جو بیلوں نے سر ڈال کر کے جوا گردن پر لے لیا، یہ ہے اسلام، یہ ہے سر افگندگی. قرآن کریم میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. حَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ نے اس امانت کو، اس رسپانسبلٹی کو انسان نے اٹھا لیا. اس نے جوا اس کو دکھایا تو اس نے سر ڈالا اور اس رسپانسبلٹی کو اپنی گردن پر لے لیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مطلب ہی ہے. جب آپ نے یہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس میں دو باتیں مانی، ایک اللہ کو معبود مانا، دوسرے اللہ کے سوا کے معبودیت کی نفی کی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ معبود ہیں. جب یہ بات آپ نے مان لی تو اب خود بخود یہ بات آئے گی کہ جب اللہ معبود ہیں اور میں عابد ہوں، وہ خدا ہیں اور میں بندہ ہوں، مجھے کیسے بندگی کرنی ہے، ورشپ مجھے کیسے کرنی ہے، اللہ کی بندگی مجھے کیسے کرنی ہے؟ اگر انسانوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے کہ جو جس طرح چاہے اللہ کی بندگی کرے تو کیسے کام چلے گا؟ انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. لہذا اگلا جملہ ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ، آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغام بر ہیں. پیغام معنی میسج اور بر معنی ER messenger, पैगंबर क्या पैगाम लाए हैं, अल्लाह इंसान अल्लाह की बंदगी कैसे करें, वो अल्लाह ने हुजूर के जरिए हमें बताया है। लिहाजा हमने जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा तो अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बंदगी की जो जो शक्लें बताई हैं उन सब का पालन करना, उन सब पर चलना, उन सब की तामील करना, यही अल्लाह की बंदगी है। लोगों में एक गलत फहमी है मेरे भाइयों, वो ये समझते हैं कि नमाज पढ़ने ही का नाम बंदगी है, ऐसा नहीं। बंदगी माबूद के हर हुक्म की तामील करना, ओबई इताअत करना, हर हुक्म की तामील करना, ये बंदगी। उन्होंने कहा पांच वक्त की नमाज पढ़ो इस तरीके पर पढ़ो, ये बंदगी। उन्होंने कहा साल में एक मर्तबा अपने माल में से इतना हिस्सा गरीबों को पहुंचाओ, ये बंदगी है। उन्होंने कहा कि साल में एक महीने के रोजे रखो, सुबह के इतने वक्त से शाम इतने वक्त तक खाओ पियो मत, बीवी से ताल्लुक मत कायम करो, ये रोजा रखना ये बंदगी है। उन्होंने हुक्म दिया कि जिंदगी में एक मर्तबा यूं मेरे घर आओ, मेरे घर की जियारत करके जाओ, इस तरीके से जियारत करके जाओ, ये बंदगी है। उन्होंने हुक्म दिया कि जब दुकान खोल कर बैठो तो यूं बेचो यूं मत बेचो, किराए पर दो तो इस तरह किराए पर दो इस तरह मत दो, जमीन किसी को बटाई पर दो इस तरह मत दो, कमाई के हलाल जरिए ये हैं और ये जरिए हराम हैं। ये सब मामलात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना, इसका नाम बंदगी है। बंदगी सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, अखलाक है। अल्लाह के रसूल ने बतलाया, कुरान करीम ने बतलाया कि तुम्हारे अल्लाह पर ईमान लाने वालों के अखलाक और मैनर ऐसे होने चाहिए। वो अखलाक इख्तियार करना यही बंदगी है, और उस अखलाक की जो अजदाद है उसके अगेंस्ट दूसरे अखलाक इख्तियार करना ये अल्लाह की नाफरमानी है। तो मेरे भाइयों सिर्फ नमाज में इन बंदगी मुनहसिर नहीं है, बंदगी की शक्लें हैं, उन तमाम शक्लों को सारे दीन पर, वो दीन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें लाकर पहुंचाया है, उस सारे दीन पर अमल करना ये बंदगी है। और अल्लाह के रसूल ने जो हमें दीन लाकर दिया है उसमें ये हुक्म भी लाकर दिया है, बल्लिगू अन्नी वलौ आयतन, पहुंचाओ तुम मेरी तरफ से चाहे एक आयत, तुम जानते हो। बाद लोग कहते हैं तबलीग करना मौलवियों का काम है, ये गलत है। हदीस शरीफ कह रही, बुखारी शरीफ की हदीस, कि तुम्हें अगर एक आयत दीन का एक हुक्म मालूम है वो भी आगे पहुंचाओ, हाँ जो तुम्हें मालूम नहीं है वहां खामोश रहो, वो मौलवी जाने, लेकिन जितना तुम मोटी मोटी दीन की बातें जानते हो जिसको तो हर मुसलमान जानता है, इसको आगे पहुंचाने में क्या परेशानी। तो ये कहना कि दीन की तबलीग करना उलमा का काम है, बेशक, लेकिन उलमा वो दीन की बातें जो आम मुसलमान नहीं जानते वो उलमा से पूछेंगे, उलमा बताएंगे, लेकिन जो दीन की बुनियादी बातें जिसको हर मुसलमान जानता है। मेरे भाइयों एक हदीफ है, बहुत मशहूर हदीफ है, और आप हजरात को हदीस मालूम भी हो तो भी उसे बार बार सुननी चाहिए, इसलिए कि उसमें पूरे दीन का खुलासा निचोड़ आया है। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे कि अचानक मस्जिद में एक नौजवान सर दाढ़ी के बाल काले, कपड़े निहायत उजले सफेद, मस्जिद में दाखिल हुए और वो मजमे को चीरते हुए हुजूर के करीब आकर बैठ गए, घुटने हुजूर के घुटने से लगा दिए। अब सब सहाबा हैरत में, ये कौन है? ऐसा मालूम जैसे घर में से नहा धोकर कपड़े बदल कर आ रहा है, यानी मदीने का बाशिंदा है। मदीने का बाशिंदा है तो मजमे में से कोई पहचानता नहीं। आज तो ऐसा हो सकता है कि हमारे नेबर हो और हम न पहचानते हो, हमारे महल्ले में हो और हम न पहचानते हो, आज तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मशरिकी तहजीब में ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देवबंद का हो और देवबंद का कोई आदमी उसे नहीं पहचाने, कैसे हो सकता है? उसने आकर बैठ करके सो पहला सवाल किया, मल ईमान, ईमान क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात बातें मानने का नाम ईमान है। देखो ईमान का लफ्ज मुख्तलिफ माने में आता है। यहां जो ईमान है वो माना वो है, और एक तबलीग वाले ऐलान करते हैं बे नमाज के बाद बैठ जाइए, ईमान और यकीन की बात होगी, वो ईमान और है, वो तबलीग वालों का ईमान है। वो लफ्ज ईमान बमाना यकीन इस्तेमाल करते, ईमान का लफ्ज यकीन के माने में आता है, और ये ईमान ये दूसरा ईमान है। हुजूर ने फरमाया सात बातें मानने का नाम ईमान है, अल्लाह को मानना, अल्लाह के फरिश्तों को मानना, अल्लाह की तमाम किताबों को मानना, अल्लाह के तमाम रसूलों को मानना, अल यौमुल आखिर, इस दुनिया का लास्ट डे आ रहा है, इस पर यकीन रखना, ईमान रखना कि लास्ट डे आ रहा है, मरने के बाद जिंदा होना, जब लास्ट डे आएगा तो जो मर गए हैं मरने के बाद सब जिंदा होंगे, इसको मानना, और भली बुरी तकदीर को मानना। ये सात बातें मानने का नाम ईमान है। इन सात में से छह तो आप लोग समझते हैं, लेकिन भली बुरी तकदीर मानना इसको कुछ लोग सही नहीं समझते। तकदीर के माने हैं प्लानिंग, अंदाजा ठहराना। जैसे आप ये बिल्डिंग बनाएं तो बिल्डिंग बनाने से पहले आर्किटेक्ट से इसकी प्लानिंग होगी। अल्लाह जल्ल शानहु अम्मा नवालहु ने ये जो दुनिया पैदा की है तो अजल में जब कोई चीज नहीं थी, अल्लाह ने अपनी दुनिया, जो अल्लाह आगे दुनिया पैदा करने वाले हैं उसकी अल्लाह ने प्लानिंग कर ली। प्लानिंग के बगैर ये दुनिया नहीं पैदा हुई, इसी का नाम तकदीर है। ये जो अल्लाह ने प्लानिंग की है अजल में, जब ये पूरी कायनात नहीं थी, अल्लाह ही थे उस वक्त, जो अल्लाह ने इस आलम के लिए प्लानिंग की है उसका नाम है तकदीर। उस तकदीर में ये है कि घी खाओगे फैट मैन बनोगे, और पॉइजन खाओगे तो मरोगे, मसान मरघट पहुंचोगे। ये प्लानिंग में दाखिल है। चुनांचे सारे इंसान अल्लाह की इस तकदीर को मानते हैं कि इंसान के लिए घी मुफीद है और पॉइजन मुजीर है, ये भली बुरी तकदीर है। भली बुरी तकदीर यानी इंसान के लिए प्लानिंग ये है कि घी इंसान के लिए मुफीद है और क्या नाम पॉइजन इंसान के लिए मुजीर है, और हर इंसान बड़े पैसे खर्च करके क्रीम लाता है और खाता है, और हजारों कोस पॉइजन से दूर भागता है। अगर जरा सा शुबा भी हो जाए कि इस शराब में पॉइजन है तो शराब पीने वाले भी नहीं पियेंगे उसे। ये भली बुरी तकदीर ये है। इसी तरह से आमाल, आमाल में भी तकदीर है कि नमाज पढ़ोगे जन्नत में जाओगे, जिना करोगे जहन्नम में जाओगे, सदका दोगे जन्नत में जाओगे, चोरी करोगे जहन्नम में जाओगे। ये भली बुरी तकदीर है, ये भली बुरी तकदीर है। और जैसे पॉइजन और फैट में हम अल्लाह की तकदीर का पूरा लिहाज करके जिंदगी गुजारते हैं, इन आमाल में भी अल्लाह की तकदीर का लिहाज करना है। नमाज पढ़ोगे जन्नत में जाओगे, नमाज छोड़ोगे जहन्नम में जाओगे, जकात दोगे जन्नत में जाओगे, जकात रोकोगे जहन्नम में जाओगे, रोजा रखोगे जन्नत में जाओगे, रोजा नहीं रखोगे जहन्नम में जाओगे। नबियों पर और नबियों के जरिए जो अल्लाह ने दीन वही भेजी है उस पर ईमान लाओगे जन्नत में जाओगे, और नबियों का इनकार करोगे अल्लाह की भेजी हुई वही का इनकार करोगे जहन्नम में जाओगे। यही इंसान के लिए भली बुरी तकदीर है। और जो इंसान के लिए मुफीद बातें हैं वो इख्तियार करनी है। और इंसान कायनाती चीजों की हद तक अल्लाह की तकदीर की पूरी पाबंदी करता है। अगर तजर्बे से मालूम हो जाए कि ये चीज मुजीर है तो कभी करीब भी नहीं जाएगा, और तजर्बे से मालूम हो कि ये चीज मुफीद है तो उसके पीछे पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, ईमान और कुफ्र में इसका लिहाज क्यों नहीं करते? ईमान जन्नत में ले जाने वाला अमल है, कुफ्र जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। पर जो जन्नत में जाएगा वो ईमान की वजह से जाएगा, जहन्नम में जाएगा वो कुफ्र की वजह से जाएगा। यही तकदीर इलाही है, यही इंसान के लिए भली बुरी तकदीर है। अगर काफिर कहे मैं क्यों कुफ्र की वजह से जहन्नम में गया, मुझे कुफ्र की वजह जन्नत में जाना चाहिए, और मोमिन, ये मोमिन ईमान की वजह जन्नत में क्यों गया, उसको ईमान की वजह से जहन्नम में जाना चाहिए, तो जवाब यह कि अल्लाह की तकदीर है, तुम कौन दखल देने वाले बीच में होते हो। अल्लाह ने कायनात पैदा करने से पहले इस कायनात के बारे में प्लानिंग कर ली है कि ईमान जन्नत में ले जाएगा, कुफ्र जहन्नम में ले जाएगा, नमाज रोजा जकात हज जन्नत में ले जाएगा, और बुराइयां कबाइर और गुनाह जो है जहन्नम में ले जाएंगे। ये अल्लाह की तकदीर है, इसमें किसी को करने के दरमियान दखल देने की इजाजत नहीं है। कोई कहता है कि मुझे दो टांग दी अल्लाह ने, भैंस को चार क्यों दी, मुझे भी चार देते मैं दौड़ता, और कन खजूरे को 44 पैर दिए मुझे दो ही पैर क्यों दिए, ये अल्लाह की तकदीर है। तू बोलने वाला कौन है भी? कि इसको एक दो आंखें दी, फला मखलूक को एक आंख दी और फला मखलूक को कोई आंख न दी, ये अल्लाह की तकदीर है, उसमें तुझे दखल देने की क्या जरूरत। वो एक साहिब थे, चलते चलते एक आम के दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठे और लेटे, तो ऊपर कैरियां लग रही थी और करीब में खेत में बेल पर तरबूज लग रहे थे। तो वो बैठे पड़े पड़े सोच रहे थे कि अल्लाह मियाँ भी अजीब हैं, इतने बड़े दरख्त को इतनी इतनी कैरियाँ दी हैं, और ये बिचारी ना तवा बेल, इसको इतना बड़ा बड़ा फल तरबूज उठवाया है, क्या इंसाफ है अल्लाह पाक का। ये सोच ही रहे थे ऊपर से एक आम टूटा और टन दे के पड़ा, तो एकदम बैठे कि अल्लाह मियाँ अकलमंद हैं, ये तरबूज वहां होता तो आज सत्यानाश हो जाता मेरा। तकदीर इसका नाम है। तकदीर का मसला सबसे ज्यादा आसान है, लोगों ने उसे मुश्किल बना दिया है। मैंने उसको समझाया कि भली बुरी तकदीर यानी इंसानों के ताल्लुक से क्या चीजें मुफीद हैं, क्या मुजीर हैं, कौन से अकीदे मुफीद हैं, कौन से अकीदे मुजीर हैं, कौन से आमाल मुफीद हैं, कौन से आमाल मुजीर हैं, कौन सी चीजें जन्नत में ले जाने वाली, कौन सी चीजें जहन्नम में ले जाने वाली हैं, दुनिया की चीजों में से हेल्थ और सेहत के लिए कौन सी चीज मुफीद है, कौन सी मुजीर है, हर चीज की एक प्लानिंग है। मेरे भाइयों, अगर ये प्लानिंग न होती तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाता। हमने एक मर्तबा घी खाया तो मोटे ताजे हुए, फिर दूसरी मर्तबा ला कर खाया तो मर गए, कल को उसका नतीजा कुछ निकला, आज उसका रिजल्ट कुछ निकला, तो हम कैसे कायनात की चीजें इस्तेमाल करेंगे? उसकी एक मुअय्यन प्लानिंग होगी तो हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। मेरे भाइयों, यही हाल अकीदों का है, यही हाल आमाल का है کہ عقیدوں کے بارے میں بھی اللہ کی پلاننگ ہے اور اعمال کے بارے میں بھی پلاننگ ہے. جنت میں جو کون سے عقیدے اور کون سے اعمال لے جائیں گے اور جہنم میں کون سے عقیدے اور کون سے اعمال لے جائیں گے, یہ بھلی بری تقدیر ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک آدمی کا جی چاہتا ہے کفر کرنے کا, زینا کرنے کا, چوری کرنے کا, تو وہ کفر کر کے, زینا کر کے, چوری کر کے جنت میں نہیں جا سکتا. کانٹے بو کر کے بیر کہاں سے کھائے گا؟ پلاننگ یہ ہے کہ جب تم نے کفر کیا ہے, زینا چوری کی ہے, تو جہنمی میں پہنچے گا. پھر سنو, یہ جو پلاننگ ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہے, تفصیل کے ساتھ ہے, گول گپا نہیں ہے. پہلے آنریری مجسٹر بنتے تھے. آپ لوگوں میں جب بڑی عمر کے ہوں گے, انگریز جب انڈیا پر انگریز جب حکومت کرتا تھا تو آنریری مجسٹر بنتے تھے. ایک بڑا مالدار ہے, چودھری ہے, بڑا کسان ہے, تو گورنمنٹ نے اس کو اعزازی مجسٹر بنا دیا, اور اس کے بھی خاص قسم کے مقدمات آتے تھے, اس کا بھی پیشکار ہوتا تھا. تو ایک ایسے ہی آنریری مجسٹر تھے, انگوٹھا چھاپ آتا واتا کچھ تھا نہیں, بڑے مالدار تھے, زمیندار تھے, جاگیردار تھے, تو گورنمنٹ نے ان کو آنریری مجسٹر بنا دیا. تو وہ ہفتے میں ایک دن کچہری کرتے تھے. ان کے پیشکار کے پاس میں سب مقدمے آتے تھے. پھر وہ جس دن کچہری کرتے تھے تو پوری مقدمات کی تھپی لا کر کے پیشکار جج صاحب کے سامنے رکھتا تھا. تو وہ بدھو میاں آتے تھے اور کہتے تھے, ایک کر عرضی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے منظور, دوسری کہ نامنظور, ایک منظور ایک نامنظور, پوری فائل دو طرف کر دیا, آدھے منظور اور آدھے نامنظور. میرے بھائیو, اللہ کے یہاں تقدیر ایسی نہیں ہے, یہ گول گپے والی تقدیر نہیں ہے, پوری ڈیٹیل کے ساتھ تقدیر ہے. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا, مشکات میں حدیث ہے, ارأیت روکن نسترقیہ و دوا ان تداوا بہ, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہم دوائیں کرتے ہیں, یہ جو ہم پرہیز کرتے ہیں کہ فلاں بیماری ہے بھائی یہ مت کھا یہ کھا, یہ جو پرہیز کرتے ہیں, اور یہ جو ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں بھائی بیماری ہوئی جڑ والا, تو یہ تین چیزیں, دوائیں, پرہیز اور جھاڑ پھونک. ان صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تین چیزیں اللہ کی تقدیر کو ٹلا سکتی ہیں؟ حضور نے فرمایا, ذالک من قدر اللہ, یہ تینوں چیزیں اللہ کی پلاننگ میں, تقدیر میں شامل ہیں. تقدیر کو ٹلانے کا کیا مطلب, یہ تو سب پلاننگ میں ہیں. تو میرے بھائیو, اسی طرح سے اللہ کی پلاننگ میں ہے کہ انسان اپنے پارشیلی اختیار سے کفر کرے گا, معصیتیں کرے گا, گناہ کرے گا, اور گناہ کرتا کرتا اسی پر اس کی موت آئے گی, اس لیے جہنم میں جائے گا. دوسرا بندہ اپنے پارشیلی اختیار سے ایمان لائے گا, صالح زندگی اختیار کرے گا, اللہ کے احکام پر عمل کرے گا, اور اسی طرح کی زندگی گزارتے گزارتے آف ہو جائے گا اور جنت میں پہنچے گا. یہ پورا سیریل, یہ پورا سلسلہ اللہ کی تقدیر میں شامل ہے. اللہ کی تقدیر اجمالی نہیں ہے, تفصیلی ہے, کہ جو جنت میں جائے گا وہ ایمان اور ان اعمال کے نتیجے میں جائے گا, اور جو جہنم میں جائے گا وہ کفر اور ان اعمال کے نتیجے میں جائے گا. خود بندے کو ابھی پتہ نہیں ہے, ہم سب بیٹھے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے موت تک ہمارے احوال کیا رہیں گے, مگر اللہ کو ازل سے سب معلوم ہے. ہم میں سے ہر ہر بندے کے احوال, اس کی زندگی آف ہوگی اس وقت تک اس کے کیا احوال ہوں گے, اللہ ازل سے جانتے ہیں. اور اگر اللہ نہ جانے تو پھر ایسا اللہ کرنا کیا ہے, دال بگار نہیں اس کی. ہمیں پتا چلا تب اس اللہ کو بھی پتا چلا, ایسے اللہ کو تو ہمارا دو ہاتھ سے سلام. اللہ عالم الغیب و شہادہ ہیں, کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں, اور بھلا جس مخلوق کو انہوں نے خود پیدا کیا ہے اس مخلوق کے احوال کو وہ کیسے نہیں جانیں گے. लिहाजा उनके इल्म के एतबार से उनको सब मालूम है कि ये जन्नत में जाएंगे, ये जहन्नम में जाएंगे, मगर ये जन्नत में जाएंगे और ये जहन्नम में जाएंगे, ये फैसला गोलगप्पे वाला नहीं है, बल्कि अला वजील बसीरत है, डिटेल के साथ है कि ये ईमान और इन आमाल सालेहा करता करता मरेगा तो जन्नत में जाएगा, ये कुफ्र और ये बुराइयां करता करता मरेगा इसलिए जहन्नम में जाएगा, और इन दोनों बातों को अल्लाह ताला अजल से जानते हैं। ये जो मैंने तकदीर की थोड़ी सी तफसील की है, इसे जहन में रखो तो बात वाज़े हो जाएगी। लोग तकदीर के बारे में सही मफहूम तसव्वुर नहीं रखते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सात बातें दिल से एक्सेप्ट करने का नाम ईमान है। फिर उन्होंने पूछा, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? यही मौजू चल रहा है, इस्लाम में कंप्लीट ले आओ, तो पहले मालूम होना चाहिए इस्लाम क्या है। तो हुजूर ने फरमाया, पांच काम करने का नाम इस्लाम है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, ये गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, माबूद सिर्फ अल्लाह है, और ये गवाही देना कि आकाए दो जहां नामदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह ने उनको अपना पैगाम देकर इंसानों की तरफ भेजा है, इन दो बातों की गवाही देना, ये इस्लाम है। गवाही कहाँ दी जाती है? गवाही दी जाती है कोई मुकदमा कोर्ट में जाता है, एक आदमी दावा करता है कि घर मेरा है, दूसरा इनकार करता है, तो जज मुद्दई से कहता गवाह लाओ, वो गवाह आकर कोर्ट में गवाही देगा उस मुद्दा आले के खिलाफ जो इनकार करता है, अगर मुद्दा आले इनकार न करे तो गवाही की कोई जरूरत ही नहीं। हमेशा गवाही मुनकिर के सामने होती है। मेरे भाइयों, दुनिया में ये दो अकीदे जो लोग नहीं मानते उनके सामने जाकर गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और आखिरी लास्ट प्रोफेट, आखिरी मैसेंजर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, ईसा अलैहि सलाम भी थे, मैसेंजर हैं लेकिन वो प्रीवियस हैं, हजरत ईसा मूसा अलैहि सलाम भी हैं लेकिन वो पहले के हैं, आखिरी जिनका पीरियड चल रहा है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। इन दो बातों की गवाही देना उन लोगों के सामने जो ये दो बातें नहीं मानते, ये इस्लाम का पहला काम है। फिर देखो, कोर्ट में जब गवाह गवाही देते हैं तो गवाहों का काम फैसला करना नहीं, उनका काम गवाही देना है। फैसला कौन करेगा? फैसला करेगा जज। आप गवाही दे दीजिए, फैसला कौन करेगा? कयामत के दिन जब कोर्ट कायम होगी उस वक्त अल्लाह यहकुम बैनहुम यौमल कयामत, अल्लाह फैसला करेंगे। फैसला करना जज का काम है, आपका काम फैसला करना नहीं, आपका काम गवाही गुजारना है। और जो इन दो अकीदों को नहीं मानते हैं उन तक जाकर के ये दो अकीदे पहुंचाओ। मेरे भाइयों, उम्मत की गफलत का हाल ये है कि मुसलमान ही कलमा से महरूम हो गए, मुसलमान भी कलमा नहीं जानते, हम उन तक कलमा नहीं पहुंचा सके, और दूसरे तक गैर मुस्लिमों जो इन दो अकीदों का इनकार करते हैं उन तक क्या हम कलमा पहुंचाएंगे। हालांकि इस उम्मत का ये फरीजा है कि हर इंसान, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, मजूसी हो, कुछ ही हो, ये दो अकीदे नहीं मानता उसके सामने गवाही देनी, यानी उससे कुछ नहीं कहना। गवाही क्या देनी? हमारी दुकान में एक मुलाजिम है गैर मुस्लिम, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, साथ में बैठा हुआ गैर मुस्लिम है, प्लेन में सफर कर रहे हैं, मिलना जुलना है, पार्क में मुलाकात हुई, तो आप उसे यूं पूछें, आप जानते हैं मेरा मजहब क्या है? वो कहेगा हाँ जानता हूं आप मुस्लिम हैं, या ये कहेगा नहीं जानता, तो आप उससे कहें, अगर वो कहे नहीं जानता तो आप कहो कि मैं मुसलमान हूं, और ये जानते हैं आप इस्लाम किसको कहते हैं? वो कहेगा मैं तो नहीं जानता। तो आप कहें कि देखो मैं मुसलमान हूं, मेरा ये अकीदा है। आप उससे कुछ न कहें, आप उससे कहें मेरा ये अकीदा है कि माबूद सिर्फ अल्लाह है, उनके अलावा कोई माबूद नहीं, न कंप्लीट पूरा माबूद है न पार्शियली माबूद है। जैसे ईसाइयों के यहाँ त्रिनिटी में दो खुदा और हैं, सिर्फ अल्लाह माबूद है कंप्लीटली, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। और आखिरी मैसेंजर जो आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला पैगंबरों का चला, उनमें आखिरी पैगंबर मक्के में एक शख्सियत पैदा हुई आज से इतने साल पहले, जिनका नाम है पाक मोहम्मद था, वो उनको मैं आखिरी मैसेंजर मानता हूँ, और वो अल्लाह के यहाँ से जो पैगाम लाए हैं उस पर मैं चलता हूँ। बस इतनी बात आपने उसके सामने कह दी, आपने गवाही दे दी। अब अगर वो समझदार है, अल्लाह ने उसके नसीब में खैर रखी है, उसके लिए लम्हे फिक्रिया पैदा होगा और वो अपने अकीदों को हमारे अकीदे से कंपेयर करेगा, और अल्लाह अगर चाहेंगे तो और सोचेगा, मुताला करेगा, और नहीं करेगा तो हमने अपना फरीजा पूरा कर दिया। मेरे भाइयों, गवाही देना कुल इतना है, मगर हमारी तो ये आफत है कि 20 साल से एक हिंदू हमारे फर्म में मुलाजिम है, कभी हमने उस मुलाजिम को समझाया ही नहीं है कि हम मुसलमान हैं, तू हिंदू है, मुसलमान जो मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने का क्या मतलब है। हमने उस हिंदू के सामने कभी इसकी वजाहत ही नहीं की। बैठे बैठे सफरों के अंदर गप करते रहते हैं, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, लेकिन किसी मुनासिब अंदाज पर आप अपना ये दो अकीदे उसके सामने रख दें, इतना हम नहीं करते। तो फरमाया पहला अमल, इस्लाम का पहला अमल तौहीद बारी और रिसालत मोहम्मदी की गवाही देना है। गवाही मुसलमान के सामने नहीं होगी, मुसलमान तो कलमा तैयबा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम किसी मुसलमान को सिखलाएंगे तो कलेमा तैयबा सिखलाएंगे, और कलेमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा, अजान होती है ना, अजान में कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्यों? गांव में कोई जरूरी थोड़े सारे मुसलमान हो, आधा गांव हिंदू है, उन तक शहादत दे रहे हैं हम, लेकिन वो हिंदू बेचारा अरबी नहीं जानता, और वो हिंदू क्या जानता है, ये जो शहादत दे रहा है ये भी नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूं। हमारी बदकिस्मती का हाल देखो कि हम कहां तक पहुंचे हैं। बस ऐसी सूरत में अरबी अल्फाज बोलने से काम नहीं चलेगा। जिस जुबान को वो समझता है उस जुबान में आपको वो मफहूम मजमून समझाना पड़ेगा। तो फरमाया हुजूर ने कि पांच कामों का नाम इस्लाम है, तौहीद और रिसालत मोहम्मदी की मुनकिरों के सामने गवाही देना, और नमाजों का एहतमाम करना, ज़कातें अदा करना, माह रमज़ान के रोज़े रखना, और बैतुल्ला की ज़ियारत करना, हज करना अगर तुम्हारे अंदर माली वसत है। इन पांच चीज़ों का नाम है ईमान। तो अगर ये पांच काम करोगे, इसके अलावा छोटे छोटे काम और भी बहुत है, लेकिन ये पांच काम करोगे तभी तो इस्लाम में कंप्लीटली आए। और अगर नमाज तो पढ़ता है जकात नहीं देता, नमाज पढ़ता है रोजे नहीं रखता, रोजे रखता है नमाज नहीं पढ़ता, जकात देता है नमाज नहीं पढ़ता, सब कुछ करता है, अल्लाह ने गुंजाइश दी हज के लिए नहीं जाता, हज के लिए हर साल जाता है नमाज नहीं पढ़ता, हर साल हज को जाता है नमाज नहीं पढ़ता। तो मेरे भाइयों, ये तो इस्लाम की तरफ एक कदम आया, एक कदम दूसरी तरफ रहा, ये कंप्लीटली इस्लाम में नहीं आया है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के निशाने कदम पर मत चलो। एक आदमी चला जाता है फिर उसके पैरों के निशान है, वो निशान देख देख कर दूसरा जाता है, शैतान गया है। देखो मेरे भाइयों, कभी गुनाह न करना, ये फरिश्तों की शान है। कभी कोई गुनाह हो ही नहीं तो फरिश्तों की शान है, और गुनाह करके उस पर अड़ जाना, तोबा न करना, ये शैतान की शान है। और इंसान का कमाल क्या है, कि गुनाह करे नहीं और हो जाए तो फौरन तोबा। दादा ने गुनाह किया नहीं था, लगजिश हो गई थी, फिसल पड़े थे, गुनाह हो गया था, गुनाह हो गया तो फौरन नदामत के आंसू बहाए, इतने बहाए इतने बहाए कि अल्लाह की तरफ से मगफिरत खुद इस्तकबाल करने आई और अल्लाह ने कलेमात सिखलाए कि ये कलेमात हैं, ये कलेमात के जरिए से तोबा करो हम कबूल कर लेंगे। तो गुनाह न करना ये इंसान की शान नहीं, तो मलाइका की है। गुनाह करके अड़ जाना ये शैतान का काम है, और गुनाह करके गुनाह न करना, खुद गुनाह कभी मोमिन गुनाह कर नहीं सकता है। हाँ, फिसल पड़े, नफ्स काबू में ले ले, शैतान दबोच ले तो मजबूरी में हो जाएगा, लेकिन गुनाह होते ही नफ्स हटेगा, शैतान भागेगा। जब आदमी तन्हा होगा तो गुनाह होने के बाद में उसको फौरन एहसास हो जाए। वैदा फालू फाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फस्तग़फिरू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून। लिहाजा मेरे भाइयों, कुरान ये कह रहा है कि शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, तुम्हारा सरीह दुश्मन है। अल्लाह की बातें अल्लाह के रसूलों ने, अल्लाह के नेक बंदों ने जो आपको बतलाई, इन बातों को सुनो, उनके ऊपर चलो। और इस्लाम का अपना एक इम्तियाज़ है, उस इस्लाम के इम्तियाज़ को बाकी रखो। देखो मेरे भाइयों, ये सिख हैं, उनके मजहब का इम्तियाज़ है दाढ़ी और पगड़ी। आज दुनिया में कहीं चले जाएं, उनकी दाढ़ी और पगड़ी को कोई छू नहीं सकता। और इस्लाम का इम्तियाज़ भी दाढ़ी थी, इस्लाम का यूनिफॉर्म है दाढ़ी। सिखों की दाढ़ी और तरह की है, साधुओं की दाढ़ी और तरह की है, मुसलमान की दाढ़ी और तरह की है। ये दाढ़ी इस्लाम का इम्तियाज़ है, मगर मुसलमान ने अपना इम्तियाज़ खो दिया। क्यों? शैतान ने पट्टी पढ़ाई कि दाढ़ी के बगैर तेरा जॉब बाकी नहीं रहेगा। अरे भाई, इन सिखों का जॉब बाकी, तुम्हारा क्यों खत्म हो गया? ये शैतान पट्टी पढ़ाता है कि तू दाढ़ी रख लेगा तेरा जॉब बाकी नहीं रहेगा, कहीं जॉब नहीं, रज़्ज़ाक अल्लाह है, कोई नहीं। इसी तरह से लोग जॉब करते हैं और नमाज नहीं पढ़ते, कहें तो कहते हैं बॉस इजाजत नहीं देता। अरे बॉस को क्या परेशानी? परेशानी कहां है? मुसलमान जॉब पर नमाज पढ़ना चाहता है और नमाज में आधा घंटा जो लगाता है उसकी भी तनख्वाह लेना चाहता है। अरे भाई, उसकी तनख्वाह तूने अपनी इबादत की, तेरा आधा घंटा खर्च हुआ है, पेमेंट किस चीज का? या तो तू अपने ओवर टाइम लगा, तूने आधा घंटा नमाज में लगाया है तो एक घंटा ओवर टाइम लगा, एक घंटा ना लगा कम से कम पौन घंटा ओवर टाइम लगा, या अपने टाइम में से आधे घंटे की तनख्वाह कटवा, फिर देख कौन सा बॉस है जो तुझे नमाज पढ़ने से रोके। कोई बॉस दुनिया में ऐसा पागल कोई इंसान नहीं है, और हो सकता है ऐसा कोई पागल भी, कोई पागलों की कमी नहीं है दुनिया में, एक ढूंढो 70 मिलते हैं। तो अगर ऐसा कोई बॉस है तो छोड़ो, मुल्क खुदा तंग नेस्त पाए गदा लंग नेस्त, अल्लाह की हुकुम मुल्क थोड़े ही तंग है और हमारा पैर थोड़े लंगड़ा है, किसी और जगह जॉब कर लेंगे। लेकिन समझदार आदमी है वो कभी इनकार नहीं कर सकता। जब आप आधा घंटा लगाते हैं और पौन घंटा ओवर टाइम करते हैं, या आधा घंटा लगाते हैं उसकी तनख्वाह कटवाते हैं, वो क्यों मना करेगा? लेकिन आदमी को पढ़नी खुद नहीं है नमाज, और बहाना बॉस का करता है कि बॉस हम मुझे इजाजत नहीं देता। मेरे भाइयों, ये सब बहाने हैं। अगर आदमी न चाहे तो फिर हर चीज दुश्वार है, और जिस दिन आदमी चाहेगा हर काम आसान है। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम का शियार दाढ़ी है। आओ लंदन, वो भी आपसे एडवांस मुल्क है यूके, वहां मैं जहां मैं जाता हूं मस्जिदों में पहली दूसरी तीसरी सबके अंदर कोई बेदाढ़ी का होता ही नहीं। मैं नहीं, लंदन में कोई बेड दो तीन सबों में कोई बेदाढ़ी का नहीं, पीछे कुछ होते हैं, वो तो हमारे हिंदुस्तान में भी होते हैं, लेकिन ये जो आपका मुल्क है उसमें इसकी कमी है। मेरे भाई, जो कमी हो माननी चाहिए कि ये कमी है। यहाँ अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो पहली सफ में नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोज कबीरा गुनाह करते हैं दाढ़ी मुंडाते। आकर पहली सफ में नमाज पढ़ने का मतलब अल्लाह का नेक बंदा है, दीन का जज्बा है। और फिर दीन का नेक बंदा होने के बावजूद, दीन का जज्बा होने के बावजूद एक हराम काम रोज सुबह उठकर करते। इसी तरीके से आदमी चार नमाजें पढ़ता है, जोहर नहीं पढ़ता, बॉस नहीं पढ़ने देता, बॉस के सर डाल दिया, अरे कोई बॉस वॉस नहीं है, तू पढ़ना चाहेगा तो हर बॉस पढ़ने देगा नमाज। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम में कंप्लीटली आओ। शैतान इस तरह से दुश्मन है इंसान का, खुला हुआ दुश्मन है, उसके नक्शे कदम पर मत चलो। अल्लाह के रसूल ने जो दीन पहुंचाया है उसे सीखो, समझो और तमाम मुसलमानों तक पहुंचाओ। मकामी तौर पर दावत की मेहनत करो, मकामी तौर पर से वक्त निकालो, और वक्त निकाल कर खुद अपने अंदर ज़ौक व शौक पैदा करने के लिए जमातों में निकलो, दूसरे मुसलमानों तक दीन पहुँचाने के लिए निकलो। और जब जब मौका हो तमाम इंसानों के सामने तौहीद बारी और रिसालत मोहम्मदी की गवाही दो। ये कामयाबी की राह है। अल्लाह ताला इस मजमून को समझने की और उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन मुल्कों के लोग बड़े नाजुक हैं, इनको दाढ़ी का मसल नाम लिया जाए तो वो चिढ़ जाते हैं कि कौन से मौलाना साहब आए जो दाढ़ी को कहते। अरे भाई, कहना पड़ेगा। दीन की बात अगर खोलकर तुम्हें पसंद आए तो भी कहूंगा, न पसंद आए तो भी कहूंगा। मेरे भाइयों, सोचो, जो दीन की बातें हैं उनको कद्र की निगाह से सुनो और उस पर गौर करो, और अल्लाह से तौफीक मांगो कि अल्लाह हमें दीन के हर हर हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। Thank you.